इदं शुद्धं पणमिया जिणिंद वर्णेमी चंद मकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य पर्वणं वोच्छं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से आपको अपनी पहचान करने का तरीका बताया जा रहा है। इसमें 13वीं प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणाओं में से 13वीं प्ररूपणा जो संयम मार्गणा के रूप में जानी जाती है, इसका वर्णन चल रहा है। और इसमें आपने संयम का स्वरूप जाना, सामायिक का स्वरूप जाना, यानी कि सर्वप्रथम संयम का लक्षण बता करके आपको कहा कि 5 महाव्रतों को धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधाधिक 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन का रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जय करना, ये 5 प्रकार का संयम बताया। पुनः आगे चलकर संयम मार्गणा में 7 प्रकार का संयम बताया गया है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। ये 7 प्रकार से संयम मार्गणा के अंदर असंयम को भी व्याख्यायित किया गया है। तो इसमें से आपने सामायिक संयम का स्वरूप जाना है कि एक तो है कि पूर्ण रूप से स्थिर होकर समता परिणाम धारण करना सामायिक है, और दूसरा आज भी 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनियों को ये संयम होता है, यानी 7वें गुणस्थान में किंचित मात्र समय के लिए भी जब अभेद रूप अवस्था लाने का प्रयत्न संतजन करते हैं, और त्रैकालिक सामायिक में जो समता परिणति होती है, ऐसा भी सामायिक संयम है। अब दूसरा संयम है छेदोपस्थापना संयम। छेदोपस्थापना संयम की ओर चलते हैं। छेत्तूणय पर्यायम् पुराणम जोठवेय अपाणम्,
पुराणम जोठवेय अपाणम्,
पंचजमे धम्मेसो छेदो वट्टावगो जीवो। सामूहिक गाथा पढ़िए।
छेत्तूणय पर्यायम् पुराणम जोठवेय अपाणम्, पंचजमे धम्मेसो छेदो वट्टावगो जीवो।
छित्त्वा च पर्यायम् पुराणम् यः स्थापयति आत्मानम्, पंचयमे धर्मे सह छेदोपस्थापको जीवः। भव्यात्माओं, छेदोपस्थापना जो शब्द के व्युत्पत्ति से ही प्रकट होता है, छेद माने किन्हीं व्रतों के दोष लगने पर जो प्रायश्चित आदि के द्वारा छेदन होता है, शुद्धि की जाती है, और उसमें स्थित होने वाला व्यक्ति, प्राणी, मुनि छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाला कहा जाता है। तो छित्त्वा च पर्यायम् पुराणम्, यानी कह रहे हैं कि प्रमाद के निमित्त से सामायिक आदि से च्युत होकर जो सावध्य क्रिया के करने रूप सावध्य पर्याय होती है, माने थोड़ा बहुत आरंभ परिग्रह आदि होता है, पिच्छी कमंडलू ही है, ग्रंथों का खोलना पढ़ना आदि है, तो ये जो सावध्य पर्याय रूप क्रिया होती है उसका प्रायश्चित विधि के अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी आत्मा को व्रत धारण आदि 5 प्रकार के संयम रूप धर्म में स्थापन करता है, उसको छेदोपस्थापन संयमी कहते हैं। अर्थात आपको समझना है, कोई श्रावक जो मुनि व्रत को धारण करने के लिए तैयार होता है तो उसको आचार्यगण या गुरु मुनिराज या आरिकाओं को दीक्षा देने वाली बड़ी आरिका या गणिनी माताजी, ये सब पूरी विधि के अनुसार उनके मस्तक पर 28 मूल गुण के संस्कार करते हैं। तो एक अर्थ छेदोपस्थापना का है कि भेद रूप से चारित्र का पालन करना, 28 मूल गुणों का अपने ऊपर आरोपण करा करके उन मूल गुणों का पालन करना, ये भी छेदोपस्थापना संयम है। क्योंकि समय समय पर यदि इनमें किसी प्रकार का दोष लग गया तो उनका प्रायश्चित होता है, प्रतिदिन का भी प्रायश्चित होता है। दो बार प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में क्या है कि दिन भर चलने में, फिरने में, बोलने में, बात करने में, किसी प्रकार से जान में अनजान में, कृत से, कारित से, अनुमोदना से जो कुछ भी दोष लगा है तो छेदो अट्ठावनम हो मज्जम, ये बात कही जाती है कि हे भगवान मेरा छेदोपस्थापन हो जाए, अर्थात मैंने किंचित मात्र भी दोष किए हैं, किसी भी प्रकार से अगर झूठ बोलने में आया है, किसी प्रकार से कोई संयम में बाधा आई है, सच बोलने में बाधा आई है, या फिर हिंसा आदि का कोई जान अनजान में पाप लग गया है तो उसमें मेरा छेदोपस्थापन हो जाए, माने वे पाप मेरी मिथ्या हो जाए और पुनः अपने व्रतों में मैं स्थिर हो जाऊं। इस प्रकार का छेदोपस्थापना प्रतिदिन 5 बार चलता है। कैसे? 3 बार सामायिक में और 2 बार प्रतिक्रमण में। तो ये होती इसीलिए क्रियाएं हैं। आज हम भेद रूप चारित्र का पालन करके, 28 मूल गुणों का पालन करके अपनी आत्मा में स्थित जो गुण है उनको प्रकट करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष लगता है तो उन पापों का प्रायश्चित नियम से गुरु के पास, भगवान के पास। अब गुरु कहाँ लेते हैं? गुरु लोग भगवान के पास लेते हैं और शिष्य लोग गुरु के पास प्रायश्चित लेते। छोटी छोटी बातों का प्रायश्चित है, चल करके कहीं से आए तो इरिया पद शुद्धि की, उसका प्रायश्चित लिया। आहार करके आए तो एष्णा समिति में जो दोष लगा आहार वगैरह में तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीजें जब साधु के निकट रहते हैं ना तो फिर पता चलता है कि किस प्रकार से उनका चारित्र पालन हो रहा है। और असली चारित्र, असली संयम गुरुओं के समीप रहने पर ही पालन होता है, ये निश्चित रूप से जानना है। यदि दीक्षा लेने के बाद गुरु संघ से अलग हो गए या अलग कर दिए गए, या तो खुद में दोष होता है तो गुरुजन उनको अलग करते हैं, या फिर वे गुरु का अनुशासन सहन नहीं कर पाते तो वे संघ से अलग चले जाते हैं। उनके संयम में निरंतर बाधा आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि मां में सत्तु भी एकागी, इस पंचम काल के अंदर मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण, अकेला विचरण ना करे। अरे मूलाचार की एक एक गाथाओं का स्वाध्याय करके तो देखिए, पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने उसका हिंदी में अनुवाद बरसों 50 साल हो गया किया, और हरेक संघ के अंदर दीक्षा देने के बाद साधु को मूलाचार ग्रंथ दिया जाता है, आप उसका स्वाध्याय कीजिए। सामूहिक रूप में भी मूलाचार का स्वाध्याय करने की परंपरा हर संघ के अंदर देखी जाती। तो मूलाचार केवल पढ़ना मात्र नहीं है, मूलाचार का मतलब है अपने मूल आचार को अपने व्रतों का पालन करके और संहिता ग्रंथ के सूत्रों को जीवन में उतारना। उसी के अंदर ही तो कुंद स्वामी ने कहा कि मेरा शत्रु भी इस पंचम काल के अंदर कभी अकेला विचरण ना करे, उसके अंदर अनेक प्रकार के दोष आने की संभावना, कोई जीव जंतु काट ले। अकेले तो कमरे में अकेले रहना ही नहीं चाहिए, ज्ञानमती माता जी का तो सिद्धांत है कि 1 मिनट भी आप कमरे के अंदर अकेले मत रहो, और ये स्वयं भी 1 सेकंड के लिए कभी जीवन में, 72 साल के जीवन में कभी अकेले रहे ही नहीं। किसी प्रकार की भी संभावनाएं बन सकती हैं, कभी बेहोश हो गए, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, या किसी प्रकार की विकृति कोई स्वास्थ्य में या स्वभाव में या व्यवहार में आ रही है। तो अपनी चर्या का निर्दोष पालन करने के लिए संघ के साथ ही सारी चर्या का पालन, वही निर्दोष चर्या का प्रतीक होता है। तो ये संयम मार्गना के अंदर आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि बार बार अपनी आत्मा को 5 प्रकार के व्रतों का पालन कराने के लिए स्थिर करना हे आत्मन, कभी भी किसी प्रकार की विकृति आने लग जाए तुरंत मिच्छा में दुक्कड़म, यानी मेरे दुष्टत्व मिथ्या हो जाए, जरा सा किसी को धक्का लग गया तो आप एक व्यवहारिकता आपको सिखाई जाती है, सॉरी प्लीज कहते हैं ना, सॉरी माने कि सामने वाले से आप अपनी गलती को मंजूर कर रहे हैं ताकि वह आपके ऊपर बरसने ना पाए, आपसे लड़ने ना पाए और आपकी व्यवहारिकता का, शिष्टाचार का परिपालन हो जाए। इसी प्रकार से भगवान से भी कहते हैं कि भगवान मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म और कुछ नहीं, सॉरी प्लीज ही है। हे भगवान, मेरी पाप मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसा चारित्र का पालन करना यदि जरा भी दोष लगता है तो उसको बार बार अपने अंदर अनुभव करके आलोचना करना, निंदा करना, गर्हा करना, प्रायश्चित लेना और पुनः उन व्रतों में स्थिर हो जाना, ये छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। आजकल के संतों को सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम होते हैं, ये माने गए हैं कि त्रैकालिक सामायिक रूप भी और सातवें गुण स्थान में आकर के छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनियों के या उन गुणस्थानवर्ती भावों को भी प्रकट करने में भी समता परिणति आवश्यक है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना आज के भावलिंगी मुनियों को है, पंचम काल के अंत तक भी ये रहेंगे, ऐसा आपको मानना है। जो लोग एकांत से कह देते हैं आज तो सच्चे साधु ही नहीं है, तो वो सच में तो देखा जाए वही सच्चे श्रावक नहीं है, क्योंकि जिनवाणी के एक एक शब्द पर श्रद्धान करने वाला ही सच्चा श्रावक या सच्चा भक्त या सच्चा श्रद्धानी या सच्चा सम्यक दृष्टि कहा जाता है। दूसरों की आलोचना करने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, यानी गुरु निंदा और सम्यक दर्शन ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जिसने गुरु निंदा की वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो सम्यक दृष्टि है वो गुरु की निंदा कभी ना करेगा और ना सुनेगा। इसलिए यही श्रद्धान करना है कि आज भी सच्चे साधु हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। तभी तो भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कहा कि वरिष सहस सेण पुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम वरिषेण निचर्य हीन संहणने। बहुत बड़ा हमें, हम सब लोगों को छूट दी है आचार्यों ने कि हजारों हजारों साल तपस्या करके जिन कर्मों को बड़े बड़े मुनिराज शक्तिशाली संतगण नष्ट करते थे हजारों साल तपस्या करके, उन कर्मों को तम कम्मम वरिसेण एक साल भी तपस्या यदि कर ले तो नष्ट किया जा सकता है। क्यों? उसका लॉजिक दिया है निजर्य हीन समण ने कि हीन संगनन है, जब शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, हर वक्त भूख प्यास लगती है, मन चंचल है, ऐसे में भी मन को रोक करके, मन वचन काय की क्रियाओं को रोक कर 24 घंटे में एक बार आहार करके अपनी क्रियाओं का पालन करके पंचम काल के शरीर से चतुर्थ काल की चर्या को पालन कर रहे हैं अगर आप सच में, तो एक साल के अंदर आप 1000 साल की तपस्या वाले कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो छोटा बच्चा है अगर 5 साल का और वो गाड़ी चला रहा है तो उसका नाम आएगा, बड़े लोगों का नाम नहीं आता क्योंकि उनके तो लाइसेंस बनते ही रहते। कोई लड़की पायलट बन गई उसका विशेष नाम आ जाता है, क्या आकाश में उड़ने वाली आज महिलाएं भी हो गई हैं। तो अपने पर्याय से अधिक, अपनी शक्ति से अधिक मात्रा में जो कार्य करते हैं उनके नाम लिए जाते हैं और उनके कार्य की सराहना की जाती है। इसीलिए आपके कार्य की, हम लोग आज ऐसे ही नहीं तपस्या करें, हमारे भी कमजोर शरीर हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन इसलिए कर रहे हैं आज इस पंचम काल के अंदर भी कि आज मोक्ष का दरवाजा बंद है, हम अभ्यास करते करते उस मार्ग पर जाएंगे और जब कभी दरवाजा खुलेगा चौथे काल में तब हमारा भी नंबर उस गेट में प्रवेश करने का आ जाएगा। वरना आज पंचम काल में ना किसी मुनि को मोक्ष है, ना किसी श्रावक को, ना किसी आरिका को, किसी को मोक्ष ही नहीं है, पर अभ्यास करना है हमें। मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का मार्ग है। इसलिए भव्यात्माओं, संयम मार्गना का अध्ययन करते हुए संयम की ओर प्रवृत्ति करने का भाव जरूर बनाना। जितना भी हो सके, नहीं कुछ तो अणुव्रत धारण कर लेना, नहीं कुछ तो और आगे बढ़ने के लिए एक प्रतिमा, दो प्रतिमा, 11 प्रतिमा तक पालन करने की, धारण करने की भावना बनाना। तो ये हुआ छेदोपस्थापना संयम, और सात संयम के मध्य तीसरा संयम है परिहार विशुद्धि संयम। गाथा नंबर 122, पेज नंबर 116।
पंचसमिदितिगुत्तो
परिहरै सदा विजोहु सावज्जम्।
परिहरै सदा विजोहु सावज्जम्।
पंचेक्कजमो पुरिसो
परिहारय संजदो सोहु।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
पंचसमिदितिगुत्तो परिहरै सदा विजोहु सावज्जम्। पंचेक्कजमो पुरिसो परिहारय संजदो सोहु।
पंचसमितः त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि सावज्जम्। पंचैक यमः पुरुषः परिहारक संयतः स हि। अर्थात पांच प्रकार के जो समितियां हैं, तीन गुप्तियां, पांच प्रकार की समिति कौन सी है? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। इनका पालन मुनिजन करते हैं। और तीन गुप्तियां हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। यानी मन वचन काय पर एकदम अनुशासन करके बहुत कम से कम बोलना, और जो बोला जाए एकदम हितकारी वचन हो, कभी भी अपने मुख से किसी के प्रति अपशब्द ना हो। ऐसे उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले जो पांच प्रकार की समितियां और तीन प्रकार की गुप्तियों का पालन करके, और जो सदा सावधि का त्याग कर देते हैं, माने अनुमति रूप भी, यानी कि जिन्होंने संयम का पालन किया है तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। यानी पहले संघ का संचालन वगैरह करते हैं, शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं और उनका परिपालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। धीरे धीरे करके समस्त सावध्य का पूर्ण रूप से विकल्पों का परित्याग करने वाले जो होते हैं, वो पांच समिति तीन गुप्तियों को धारण करके, इनसे युक्त होकर के संपूर्ण सावधियों का त्याग करके और परिहार विशुद्धि संयमी बन जाते हैं। यानी इतनी विशुद्धि उनके अंदर बढ़ जाती है कि जो पूर्ण रूप से सावध्य से दूर होकर केवल आत्मचिंतन में स्थिर हो जाते हैं। बस जो कुछ है मेरी आत्मा है, आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में ही जो आत्मा का ही चिंतन करते हैं, ऐसे संतों का चारित्र संयम वृद्धिंगत होते होते परिहार विशुद्धि संयम बन जाता है। ये ऐसे मुनिराज होते हैं कि जो चातुर्मास के अंदर भी विहार कर देंगे और किसी भी जीव जंतु का उनसे, उनके द्वारा घात नहीं होगा। घास के ऊपर ऊपर से चल जाएंगे, उन किसी प्रकार के जीव जंतु का विघात उनसे नहीं होगा, हिंसा उनके द्वारा नहीं होगी। तो पांच प्रकार के जो संयमी बताए हैं, कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथा क्या। इनमें से ये तृतीय संयम है परिहार विशुद्धि संयम। तो समस्त सावधियोग से दूर रहने वाला, पांच समिति तीन गुप्तियों का एकदम अच्छी तरह से परफेक्टली पालन करने वाला, वह तृतीय परिहार विशुद्धि संयम का धारक माना जाता है। इसलिए ये जानना कि आज ये परिहार विशुद्धि संयम की योग्यता नहीं है, क्योंकि उत्तम संगणन का अभाव है, शारीरिक उतनी शक्ति नहीं है, ना उतनी सहन शक्ति है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना इन दो संयम में भी निरत रह करके यदि भी अपने 28 मूल गुण का परिपूर्ण पालन कर रहे हैं, तो समझो कि भावलिंगी साधु हैं, और आगे जाकर लौकांतिक आदि देवों का, सौधर्मिंद आदि पदों को भी प्राप्त करके और आगे मनुष्य भव को धारण करके मोक्ष जाने की योग्यता उनको प्राप्त हो सकती है। तो करत करत अभ्यास की जड़ मति बने सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर बड़े पड़े निशान। इसलिए अपने संयम को ये नहीं सोचना कि आज कोई पालन ही नहीं कर सकता, इससे अपनी आत्मा के गुण जो है अवगुण में परिवर्तित होते जाएंगे। अरे साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते भी हैं, पड़ते भी हैं, चोट भी लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं, नहीं ना, करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे अभ्यास करना, गिरेंगे पड़ेंगे भी, यदि दोष भी लगेंगे तो एरल डाइट जैसा सॉल्यूशन भी आएगा, वो क्या है, प्रायश्चित। प्रायश्चित एरल डाइट सॉल्यूशन है कि जिसके द्वारा पुनः जैसे ही गुण आत्मा से अलग होने लग गए, फिर उन्हें लाके चिपका दिया गया। अपनी निंदा की, गुरु से प्रायश्चित लिया, तो ये जोड़ना हो गया, गुणों को आत्मा से जोड़ना हो गया। तो इस प्रकार से सामयिक छेदोपस्थापना संयम का परिपालन करते हुए पंचम काल के मुनि अपनी चर्या में स्थित रहें, और जो मुनि नहीं है, श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, वे ऐसे मुनियों के प्रति हमेशा अपने श्रद्धा भाव रखें, भगवान की वाणी पर श्रद्धान रखें कि पंचम काल के अंदर आज भी सच्चे साधु हैं। और चतुर्थ काल में भी दोष लगते थे, ऐसी बात नहीं कि चतुर्थ काल में दोष नहीं लगते थे। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि सात प्रकार के संयम में असंयम और देश संयम को भी लिया है, जिसका व्याख्यान हम आगे करेंगे, और पांच प्रकार के संयमों में तीन प्रकार के संयम का आपने अध्ययन कर लिया है। उनमें से प्रथम जो दो संयम है, सामायिक और छेदोपस्थापना, वो आज के संतों को प्राप्त है, उनमें हमेशा श्रद्धान करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना।